please come forward. जल्दी जल्दी
जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की हरे कृष्णा। तो आज हमारे संध्या जागृति कार्यक्रम में 5 जुलाई मंगलवार के दिन आप सबका स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने क्या लीला किया उसके बारे में आज वर्णन करेंगे। उसके पहले आपको पता होगा कि राजा प्रतापरुद्र, आपने इस कथा में पहले सुना होगा, राजा प्रतापरुद्र ये उड़ीसा के राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे और जगन्नाथ भगवान के बड़े भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तो उस समय राजा प्रतापरुद्र को मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया, यह कहकर कि मैं सन्यासी हूं और राजा है, राजा के पास बहुत ऐश्वर्य होता है, राजा सत्ता होती है, तो सन्यासी आदमी ऐसे सत्ता वाले आदमी को मिलता नहीं, उसके पास सत्ता है, पैसा है, धन दौलत है, स्त्रियां हैं, ऐसे लोगों से नहीं मिलता है। राजा प्रताप ने सोचा कि अगर मुझे राजा बनने पर भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो मुझे राजा बनना नहीं है, इसलिए उन्होंने रथ यात्रा में भगवान के सामने झाड़ू लगाया इस भावना से कि अगर राजा बन के भगवान नहीं मिलते हैं तो भंगी बनना अच्छा है, झाड़ू लगाएंगे हम और अगर उससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो वही हमारे लिए अच्छा है। तो क्या बताते हैं वो, दुनिया में अगर हमारा कोई अच्छा ऊंचा पद है, हमारी बड़ी डिग्री है, बड़ा पोजीशन है, बड़ी पावर है और वो होने पर भी अगर हमको भगवान नहीं मिलते हैं तो सब यूजलेस है। तो क्या करने से भगवान मिलते हैं वो हमको करना चाहिए, भले वो हमारे अहंकार को नहीं अच्छा लगेगा, अरे मैं ऐसा करूंगा ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अपने को, लेकिन फिर भी वो काम करना चाहिए नम्र बनकर जो हमको भगवान को प्रसन्न करेगा। तो राजा होते हुए भी प्रतापरुद्र ने रथ के सामने झाड़ू लगाया और सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक राजगुरु थे राजा प्रतापरुद्र के, वो भी चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे, तो उनको अपने दिल की बात उन्होंने बताई, क्या करूं मैं राजा होके भी महाप्रभु मुझे नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि महाप्रभु चैतन्य आपसे मिलेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको राजा को सब भक्तों का सेवा दिया। जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग आए, बंगाल से आए जगन्नाथपुरी में, तो सब भक्तों के रहने की खाने की सब व्यवस्था जो है राजा प्रतापरुद्र ने की। तो यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए कि चलो मेरे भक्तों का सेवा किया। फिर एक साउथ इंडिया के गवर्नर थे रामानंद राय, जो भी राजा प्रतापरुद्र के अधिकार में काम करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रभावित कर दिया। वो विशाखा सखी के अवतार थे लेकिन रामानंद राय के रूप में गवर्नर के रूप में सेवा दे रहे थे, तो महाप्रभु ने कहा हमारे संग चलो। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो गवर्नर हूं, मेरे सेवा है यहां पर, मेरा ड्यूटी लगता है। तो उन्होंने राजा को इस्तीफा दे दिया कि राजा प्रतापरुद्र मैं अभी रिजाइन कर रहा हूं, मुझे महाप्रभु चैतन्य के साथ जाना है। तो क्यों, महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि मेरे संग रहो। राजा प्रतापरुद्र कहते हैं अरे तुम कितने भाग्यवान हो, मैं राजा होकर मुझे मिलना नहीं चाहते हो और तुमको बोल रहे हैं मेरे संग चलो, तुमको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पूरा पगार लो और उनके साथ रहो, मतलब फुल रिटायरमेंट विद फुल सैलरी, ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो राजा ने कहा कि आपका पूरी तनख्वाह चलती रहेगी जिंदगी भर, और आप इतने भाग्यवान हो, जो भाग्य मुझे मुमकिन नहीं है वो आपको मुमकिन है, इसलिए मैं आपको आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करता हूं। आप ऑन ड्यूटी रहेंगे, छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन पूरा पगार पर चलता रहेगा। ये बात भी चैतन्य महाप्रभु को पता चली, तभी भी उनको बहुत खुशी हुई, हाँ और एक अच्छा काम किया। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते रहे और क्या करना चाहिए, सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते रहे क्या करना चाहिए, रुको टाइम आएगा तब सेवा होगी। तो यथावकाश रथ यात्रा का आरंभ हुआ। हाँ आपको जानते हैं ना, हमने लास्ट टाइम कहानी बताया था आपको कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे सब भक्तों को मिलाकर गुंडीचा मर्दिन साफ कर दिया। हाँ उसके नेक्स्ट डे जब रथ यात्रा का आयोजन होने वाला था तो महाप्रभु जी ने बहुत बढ़िया योजना बनाई। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, ये सब उसी भावना से हमको कल रथ यात्रा करनी है। हाँ तो उन्होंने क्या किया, चार ग्रुप बनाए और हर ग्रुप में दो मृदंग, उन्होंने चाहिए कि दो मृदंग होना चाहिए, और स्वरूप दामोदर को पहले ग्रुप का लीडर बनाया क्योंकि वो बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे, और पांच उनको दे दिए असिस्टेंट कि जब स्वरूप दामोदर गाएंगे तो पांच लोग दोहराएंगे। हाँ कैसे दोहराएंगे, दिल से दोहराएंगे, बोलो कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद इन लोगों को दे दिया और अद्वैत आचार्य को बताया कि आप इस ग्रुप में नाचेंगे, जब ये गाएंगे ये पांच लोग दोहराएंगे तो अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार है उन्होंने कहा, उनको कहा कि आप गाओ, आप नाचेंगे इसके अंदर। दूसरा ग्रुप बनाया, उसका इंचार्ज श्रीवास ठाकुर को दिया और उनके साथ में पांच साथी जोड़ दिए, गंगादास पंडित, हरिदास ठाकुर, श्रीमान शुभानंद और श्री राम पंडित, और नित्यानंद प्रभु को बताया, बलराम जी को, महाराज बलराम जी के अवतार को, कि आप लोग आप इस ग्रुप में नृत्य करेंगे। नृत्य करना भी जरूरी है, जब रथ यात्रा होती है तो गाना भी जरूरी होता है और नाचना भी जरूरी होता है। फिर तीसरा ग्रुप बनाया और एक बहुत सुंदर गायक थे मुकुंद, मुकुंद का गायन बहुत प्रसिद्ध था उस समय, मुकुंद जो थे बहुत सुंदर गाते थे और ऐसे कहा गया है कि जहां जहां मुकुंद जी गाते थे वहां वहां चैतन्य महाप्रभु नहीं होने पर भी वहां पर प्रकट हुआ करते थे, इतना मुकुंद का गायन जो था ऐसे भगवान को खींच के लेके आता था। तो उसी मुकुंद को तीसरे ग्रुप का इंचार्ज बना दिया, लीड सिंगर, और पांच लोग उसको दे दिए, वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी, श्रीकांत और वल्लभ सेन, और नाचने के लिए बताया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार है, वहां पर उनको बोला कि आप यहां पर नाचेंगे। और चौथे ग्रुप में उन्होंने गोविंद घोष, एक जगह है उसका नाम है अग्रद्वीप, नवद्वीप के अंदर एक अग्रद्वीप है, उसमें तीन भाई रहा करते थे, वासुदेव घोष, गोविंद घोष और गोपाल घोष। इसमें से वासुदेव घोष बहुत अच्छी कविता करते थे, बहुत सुंदर कविता करते, उनकी सुंदर कविता अभी भी है, गौरांगा तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हो, आपना कोरिया रंगा चरणे राखी हो, सुंदर कविता उन्होंने लिखा है। तो उनको उन्होंने इंचार्ज बनाया, गोविंद घोष को, और एक छोटे हरिदास थे, छोटा हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव घोष, वासुदेव घोष, ये चार भाई, ये चार लोगों को, पांच लोगों को दिया। और वक्रेश्वर पंडित नाम के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, नाचने में बहुत एक्सपर्ट थे, हमारे हरे कृष्णा में भी एक प्रभुपाद के शिष्य हैं वक्रेश्वर पंडित, और वो स्वयं भी नाचने में इतने एक्सपर्ट हैं, जब नाचते हैं तो कई घंटा थकते ही नहीं हो, उनका नृत्य जो है बहुत मशहूर है और उनका शरीर शंख जैसा है, और जब गाते हैं तो कितने भी घंटे गाएंगे तो गला दुखता नहीं होगा, मैंने सुना, अपने आंखों से देखा है, दिल्ली में पुना यात्रा में देखा है उनको, बहुत सुंदर गाते हैं। तो वैसे ही इनके भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उनको चौथे ग्रुप में उन्होंने नृत्य करने को लगा दिया इस तरह से। और एक पार्टी पांचवी जो कुलिन ग्राम से आई, रामानंद और सत्यराज इनको नृत्य करने के लिए चुना गया, और एक पार्टी आई शांतिपुर से और उसमें अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद प्रमुख नृत्य करने वाले बने, ऐसा मत समझो कि चार ही पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियां आई और इस तरह से सात ग्रुप बनाए गए। सात ग्रुप के अंदर श्रीखंड जो पार्टी आई वहां से, वहां पर नरहरि और रघुनंदन इन्होंने मिलकर अपना पार्टी बनाया और सात पार्टी गाने वाले, उसके साथ बोलने वाले, नाचने वाले, दो मृदंग बजाने वाले, करताल वाले, सब लोगों को इकट्ठा करके पूरा बढ़िया टीम बना दिया। सात जगह सात टीम खड़ा करके रथ यात्रा आरंभ हो गई। तो चार पार्टी जो इसके अंदर थी वो जगन्नाथ के रथ के सामने गायन कर रही थी अलग अलग जगह पर। दो पार्टियां जगन्नाथ के दो साइड में थी और सातवीं पार्टी जो थी वो जगन्नाथ के रथ के पीछे थी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ी आवाज होगा उस समय। आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा में 15 लाख लोग आते हैं, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, कोई इनवाइटिंग पार्टी भी नहीं है, बुलाने वाले पार्टी नहीं है और किसी को कार्ड भी ज्यादा नहीं है। लेकिन इस एक दिन के अंदर, जैसे अभी 3 जुलाई था ना, आषाढ़ शुद्ध द्वितीया, इस दिन जगन्नाथपुरी में पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं। हमें विश्वास है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा अटेंड करने के लिए देवता लोग भी आते हैं, ऐसे ही सामान्य आदमी बन के आते हैं और जगन्नाथ जी का लाभ, दर्शन का लाभ लेते हैं। क्योंकि वहां पर जगन्नाथ का दर्शन बहुत दुर्लभ है, सबको एंट्री नहीं है, वहां पर सब लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब महाप्रभु चैतन्य थे तो कितनी भीड़ हो गई पता नहीं, उसका कोई गिनती नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आकाश में जैसे बादल भर गए हो और सब जगह पर जैसे बादल गरजते ना जोरदार, सब जगह हरिनाम की गूंज हो रही थी, ऐसे मानो बादल गरज रहे। बादल कौन थे? सब भक्त लोग जमा हुए थे सात ग्रुप के अंदर, सब गा रहे नाच रहे। उनका कीर्तन जो है, ऐसा कहा गया कि जो उन्होंने कीर्तन शुरू किया तो महाप्रभु जी की आंखों से अश्रु बहने लगे आनंद के, चैतन्य महाप्रभु, और इस कीर्तन का आवाज जो है तीनों लोकों में फैल गया, स्वर्ग लोकों में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में, सब जगह पर सब गूंज फैल गई। ऐसा होता है, आप लोगों ने अच्छा किताब में वर्णन दिया है, बहुत कल्पना कर करके लिखा है, अच्छा पोएटिक वर्णन लिखा है। ऐसा नहीं है, जब भगवान बांसुरी बजाते ना तो भी पृथ्वी के स्वर्ग लोक के सारे आवरण को पार करके स्वर्ग लोक पे पहुंच जाती है ये बांसुरी की आवाज, फिर स्वर्ग लोक ब्रह्मा लोक को पार करके वैकुंठ पहुंच जाती है और वैकुंठ से गोलोक धाम तक पहुंच जाती है बांसुरी की आवाज, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि है, कोई भौतिक इंस्ट्रूमेंट का आवाज नहीं है ये, जब भगवान स्वयं उसको बजाते हैं तो दिव्य बन जाता है और दिव्य बनने के बाद सारे भौतिक जो आवरण है उसको छेद छेद कर उसके पार चले जाता है। यहां तक कि अनंत शेष जो है ना विष्णु के वैकुंठ के सर पे वो ऐसे नाचते हैं बांसुरी की आवाज सुनकर, और योग निद्रा में सोए हुए महाविष्णु जो है वो जग जाते हैं और डोलने लगते हैं, इतना प्रभाव है मुरली का। और वही मुरली बजाने वाले जब चैतन्य महाप्रभु बनकर नीचे आते हैं और जब खुद गाते हैं तो उनकी मुरली और उनका गायन अलग नहीं है, उनके भक्तों का गायन अलग नहीं है, वो भी दिव्य बन जाता है। सारे आसमान में, सारे अवकाश में सभी आवरणों को छेद कर वो गोलोक धाम तक, वैकुंठ को पार करके आगे चला जाता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ करवाया, रथ भी आरंभ हो गया, सब लोगों ने कहा हरि हरि, बोलो हरि हरि, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, इस तरह से गूंज उठी सब जगह पर, सभी पार्टियां एक साथ में जोरदार कीर्तन करने लगी। अचानक क्या हो गया, अचानक चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे और एक पार्टी में घुस गए, हर एक पार्टी में कोई मेन डांसर था, इसमें नित्यानंद प्रभु थे, किसी में अद्वैत आचार्य थे, किसी में अच्युतानंद थे, इसमें नरहरि थे, हाँ अलग अलग लोग थे उसके अंदर, रघुनंदन थे, और चैतन्य महाप्रभु एक पार्टी में घुस गए और ऐसा नृत्य करने लगे कि उनके आंखों से पिचकारी की तरह आंसू बह रहे थे आनंद के, और वो पिचकारी के आंसू से सभी लोग भीगने लगे जो उसके पार्टी में थे। लेकिन सत्य तो ये था कि चैतन्य महाप्रभु ने सात रूप में अपने आप को विभाजित कर दिया था। एक पार्टी को लग रहा था कि हमारे पार्टी में नाच रहे, हम कितने भाग्यवान है, देखो महाप्रभु चैतन्य हमारे पार्टी में आके नाच रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक साथ अपने आप को सात रूप में विभाजित कर दिया और सातों पार्टी में एक साथ में नृत्य कर रहे थे, और हर एक पार्टी को लग रहा था कि वो केवल हमारी पार्टी में नृत्य कर रहे हैं। जैसे रासलीला में हर एक गोपी को लग रहा था कि वो केवल मेरे साथ नाच रहे हैं, सबको छोड़कर इतनी करोड़ों गोपियों को छोड़कर वो केवल मुझको चाहते हैं और केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव क्या था, हकीकत क्या थी कि वो सभी करोड़ों गोपियों को के साथ में करोड़ रूप धारण करके एक एक के साथ एक एक नाच कर रहे थे। एक चमत्कार हो गया और ये चमत्कार किसी को दिखाई नहीं पड़ा, हर एक को लगा कि केवल हमारे ग्रुप में नाच कर रहे हैं। लेकिन राजा प्रतापपुत्र स्वरूप दामोदर इन दो व्यक्तियों को यह दिख रहा था कि महाप्रभु चैतन्य एक ही साथ में सात ग्रुप में नाच रहे हैं। भैया राजा प्रतापपुत्र को क्यों ये भाग्य प्राप्त हुआ ये दिव्य देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया था। पहले भक्तों को रहने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, फिर राजा गवर्नर को जो रामानंद राय था उसको वीआरएस नहीं दिया, फुल पगारी नौकरी दिया, रिटर्न कर दिया, प्रसन्न किया था भगवान ने उसको। अगर हमको भगवान की कृपा चाहिए तो हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, ये सब लोगों को याद रखना चाहिए। इस बात को जानने के लिए कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है, इस बात को जानने के लिए भगवदगीता याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात को जानने के लिए बाइबल याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद करने के लिए कुरान याद करने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझना बहुत आसान है। अगर हमारे घर में किसी बालक को आकर किसी ने गिफ्ट दे दिया तो उसके माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं। जो हमको प्रिय है उसको आपने खुश कर दिया तो हम भी अपने आप खुश हो जाते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इन्होंने बताया, इस भगवान के सत्य को बताया कि जो भी व्यक्ति भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर भगवान कृपा करते हैं। इसलिए इतने सारे भक्त वहां नाच कर रहे थे, उनको दिखाई पड़ रहा था केवल हमारे ग्रुप में नाच कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर को और प्रताप रुद्र राजा को दिखाई पड़ रहा था कि ये एक ही ग्रुप में नहीं, ये सात ग्रुप में नाच कर रहे हैं। तो राजा प्रताप रुद्र देख रहे थे, एक ग्रुप में खड़े होकर देख रहे थे, सब कुछ नृत्य चल रहा है, इतना अनोखा नृत्य जो है, सब लोग आंसू बहा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं। और इसके जो लेखक हैं, इसको जो ऑथर है ना, इस किताब के ऑथर, वो कहते हैं कि वो जिस तरह से नाच कर रहे हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। कितना बोलेंगे, गोल गोल घूम रहे थे, हाथ पकड़ा था, बीच बीच में कूद रहे थे, लेकिन कैसे कूद रहे थे बोल सकते क्या, हम लिख सकते क्या कैसे कूद रहे थे, उसका वीडियो रहेगा तो देख सकते हैं कैसे कूद रहे थे। लेकिन उसमें वीडियो नहीं था, खाली हृदय में वीडियो था, हृदय में आंखों से, आंखों का लेंस में हृदय में पर्दे पे दिखाई पड़ता था क्या हो रहा है। तो वो देख रहे हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, इतना सुंदर वर्णन दृश्य वहां पर था। तो राजा प्रताप रुद्र के ग्रुप के जहां खड़े थे वो, उस ग्रुप में महाप्रभु चैतन्य आए, उन्होंने नृत्य किया जोर जोर से और महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी समान निकलने वाले जो अश्रु थे उसे वो भीग गए। तो उस समय एक व्यक्ति था, उसको देखना था, और श्रीवास ठाकुर उसके बीच में खड़े थे और श्रीवास ठाकुर मग्न होकर महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे और इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनको पता नहीं चला था क्या है। तो एक व्यक्ति उसके पीछे था, उनको देखना था, तो उसने उसको ऐसा हाथ किया, धक्का दिया कि जरा बाजू में जाओ, देखना है। लेकिन वो होश में नहीं थे, वो तो एकदम मग्न थे, तो उन्होंने दोबारा ऐसा किया। तो उस प्रेममयी मग्नता के अंदर श्रीवास ठाकुर ने घूमकर एक जोरदार चाट लगा दिया उसके मुंह पे कि तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो, मुझे देखना है, मैं देख रहा हूं। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है, महाप्रभु का नृत्य देख रहे हैं इतने मग्न होकर। तो वो जो चाटा लगाया जिस आदमी को, उसको भी गुस्सा आया, वो ऐसे ही मारने को आगे आ रहा था, तो राजा प्रताप रुद्र उसको रोक लिया। उसने कहा, अरे मूर्ख व्यक्ति, तू भाग्यवान व्यक्ति है, ये नारद मुनि के अवतार श्रीवास ठाकुर पंडित के हाथ का स्पर्श आपको हुआ, ये आपका भाग्य है, ये मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, ये आपको प्राप्त हो रहा है, गुस्सा मत करो, अपने आप को धन्यवाद दो। उतने में चैतन्य महाप्रभु बेहोश होकर गिर गए। तो राजा प्रताप रुद्र ने उनको अपने हाथ से उठाया और गोद में लिया, तुरंत महाप्रभु होश में आ गए। नहीं, अरे राजा के हाथ में मैं कैसे गिर गया, राजा के हाथ में मुझे नहीं गिरना है। जो आदमी धनवान है, जो आदमी अधिकारवान है, जो आदमी ऐश्वर्य संपन्न है, उसका स्पर्श मुझे हो गया, मैं अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसे महाप्रभु ने बाहर से दिखाया। लेकिन अंदर से राजा प्रताप रुद्र ने किए हुए सेवा से बड़े प्रसन्न थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को उसने पूछा, अभी क्या करूं मैं, दोबारा नाराज हो गया मुझ पर ही, मैंने उनको पास में लिया जब बेहोश होकर गिर गए थे, तो उनको गुस्सा आया, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, डोंट वरी, मैं आपको सही समय पर उसका उपाय बताऊंगा क्या करना है, आप निश्चित रहो, धीरज रखो, महाप्रभु जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। इस तरह से मित्र होने लगा। फिर महाप्रभु जी श्रीवास स्वरूप दामोदर जी को बोले अभी आप गाओ, तो उन्होंने एक सुंदर धुन के अंदर गाना शुरू कर दिया। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, अगर आप बरसाना जाओगे ना कभी, या कभी ब्रज में जाओगे, तो वहां पर ना अलग अलग भजन गाते हैं और उस भजन पर डांस भी करते हैं। अब जब डांस करते ना तो भजन के क्या बोल है उसके अनुसार एक्टिंग भी करते हैं। समझो, मुरली बजाइया रास बजाइया बोले तो ऐसा ऐसा करके नाचेंगे वो, और रास करें तो ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, तो जो जो बोल रहे हैं आप, जो गोपियों के संग जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे नाचेंगे, और मुरली बजाए तो ऐसे ऐसे करके नाचेंगे। मतलब जो गा रहे हैं उनको भी लगेगा कि कुछ गाने के अनुसार अपना एक्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही श्रीवास ठाकुर स्वरूप दामोदर गाने लगे, वैसे महाप्रभु चैतन्य ने उसका एक्टिंग शुरू किया। डांसिंग एक्टिंग, डांस के अंदर एक्टिंग शुरू किया, और सब लोग इतने मोहित हो गए उनको देखकर, वो भी सब लोग एक्टिंग करने लगे। तो इस प्रकार से इसका वर्णन बहुत सुंदर है कि जब इस प्रकार से उन्होंने नृत्य किया, सब लोगों को बड़ा आनंद हो गया, और सब लोग चैतन्य महाप्रभु को देखकर बड़े खुश हो गए और नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु नृत्य किया और बहुत ऊंची छलांग लगाई उन्होंने, उनके शरीर के रोमांच खड़े हो गए। उनका शरीर जो है, जब उनके रोमांच खड़े हो गए तो लग रहा था कांटों का झाड़ है। आप समझ सकते हैं, अगर बाल सब खड़े हो गए ऐसे लंबे सब बाल, तो दिखते थे कैसे कांटों का झाड़ है ये पूरा शरीर जो है उनका, इतना रोमांच हो गया उनको। उनके दांत जो है वो ऐसे कांपने लगे, एक दूसरे से लगकर आवाज करने लगे, लोगों को लगेगा इतना आवाज करके दांत इनके गिर जाएंगे, और उसका कंठ जो है वो गदगद हो गया, जज गंगा बोलने लगे। क्या क्या बोलने का प्रयास कर रहे थे वो, बोलो क्या बोलने का प्रयास कर रहे थे? जज गंगा मतलब क्या? जगन्नाथ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनका शब्द निकल नहीं रहा है आनंद से, जज गंगा ऐसे कर रहे हैं। और सब लोग भी आनंद से दिख रहे हैं, उनकी आंखें आंसू से भर गई थी, और सिरिंज की तरह सबके ऊपर उनकी आंखों का आंसू जो है वो गिर रहा था। और कभी आनंद के वजह से उनका शरीर का रंग गुलाबी होता था, कभी सफेद पड़ता था, कभी लाल होता था, कभी गुलाबी होता था, और कभी कभी उनके चर्म से जो पसीना बह रहा था उसकी जगह पे खून निकलता। आज भी ये लोगों ने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जब बहुत बड़ी खुशी होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है, तभी आंखों से अश्रु की जगह खून निकलता है, और पसीने से जगह चर्म से बालों की जगह पर खून निकलता है। बहुत ज्यादा अगर किसी को खुशी या दुख होता है, तो मतलब दुख हो या खुशी हो या कोई भी भावना हो, वो जब चरम सीमा पर पहुंचती है, तो आज भी ये देखा गया है। और कभी आपको अति आनंद हो गया भगवान की भक्ति में, तो आपकी आंखों से भी पिचकारी की तरह आंसू बह सकता है। अभी ऐसा बहता है ना, ऐसा खाली गाल से बहता है, जब बहुत खुशी होती है तो सीधा पिचकारी ही निकलती है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ डिवोशन। इस तरह से सभी भक्त लोग भगवान के आनंद को देखकर, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर बहुत खुश हो गए। महाप्रभु बेहोश हो गए, कभी उठ गए, कभी उनके शरीर से पसीना आया, कभी मुंह से झाग निकला, और सब भक्त उनको देखकर पागल हो गए। तो यहां पर कृष्णदास कविता दिखते हैं कैसा भयंकर नृत्य उन्होंने किया। भयंकर मतलब क्या होता है, जिसको तुलना नहीं कर सकते किसी, हाँ कोई नकल नहीं कर सकता उसकी, और ऐसा लगता है मानो प्रलय होने वाला है। इतना जोर से कूद रहे हैं, इतना जोर से गिर रहे हैं, इतना कैसे करेंगे उसको, कैसे दर्द होता होगा, शायद हड्डी टूट जाएगी, वी डोंट नो। लेकिन भगवान एक तरह से नृत्य कर रहे थे कि सबको देख के आश्चर्य हो रहा था। इसीलिए महाप्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है, उसका रास लीला से तुलना किया गया है। गौलो केरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, जो यहां पर उन्होंने नृत्य किया वो आम जनता के लिए किया, और आम जनता के लिए रास लीला का जो आनंद है वो प्रकट किया। जो गौलोक धाम का सबसे उच्च आनंद है, वो उन्होंने नीचे उतरकर भक्त बनकर यहां पर कीर्तन करके, वो नृत्य करके उसको साबित किया कि ये आनंद और वो आनंद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उस माहौल के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई श्रीमंत है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई मुस्लिम है, कोई किस जाति का है, कोई भाषा का है, कोई किस देश का है, कोई भेदभाव नहीं था। सब लोग नाच रहे थे, सब लोग भगवान का नाम ले लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे राम 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 हरे। इस तरह से यहां पर उसका वर्णन आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही स्वरूप दामोदर जोर से वो गाने गाने लगे तो इनकी एक्टिंग शुरू हो गई, और उस समय जगन्नाथ का रथ थोड़ा आगे निकल गया और ये पीछे रह गए ना डांस करते करते, तो जगन्नाथ का रथ रुक गया। ऐसा लिखा है इसमें कि जगन्नाथ का रथ और चैतन्य महाप्रभु इनके अंदर चल रहा था कॉम्पिटिशन, कौन किसको खींच रहा है, क्योंकि तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का स्वरूप है, जगन्नाथ कृष्ण है, तो राधा रानी कृष्ण को खींच रही है कि कृष्ण राधा रानी को खींच रहा है, इस तरह से वहां पर कॉम्पिटिशन हो रहा है। उसका आपको मैंने बताया होगा, एक कहानी बताई सबसे पहले तीन चार मंगलवार पहले, कि कुरुक्षेत्र के अंदर गोपियां गई थी और उन्होंने हृदय के अंदर भगवान के रथ को खींचकर वो वृंदावन ले गए थे। वो कह रहे थे कुरुक्षेत्र में क्या है, इधर क्या कर रहे हो आप, चलो चप्पल पर उतार के वन में जाएंगे, आप फिर एक बार मोरपंख धारण करो, फिर हाथ में मुरली लो, फिर गाय को हाँकने की छड़ी ले लो, हम लोग गाय चराएंगे, यहाँ पर इस शहर में क्या है, इतने सारे सैनिक है, इतने सारे रथ है, इतने सारे रानियां हैं, इतना ऐश्वर्य है, इतना मुकुट पहन कर रखा है, सब छोड़ दो, चलो जमुना किनारे जाएंगे, वहां पर गाय चराएंगे, यहां पर हमको वो आनंद नहीं आ रहा है जैसे हमको आपके साथ में वृंदावन के जंगल में आता था। वही भावना थी राधा रानी की कि यहां पर नहीं, वहां चलना है वृंदावन में। और वही राधा रानी जो है चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे, वही कृष्ण भगवान जगन्नाथ बनकर आए थे। तो महाप्रभु का जो नृत्य था जगन्नाथ के लिए, ऐसे मानो राधा रानी नृत्य कर रही थी, वो खींच रही थी उनको वृंदावन की ओर, जहां पर गुंडीचा मंदिर है ना, गुप्त वृंदावन। तो ये पीछे पीछे रह गए तो रथ आगे चला गया, तो रथ रुक गया अपने आप ही, सब लोग कोशिश कर रहे झगड़ लेके उसको आगे नहीं बढ़ रहे। वो उसका रहस्य क्या था, जगन्नाथ को अपनी प्रियतमा राधा रानी पीछे रह गई, उसको देखना था उसको। तो फिर नृत्य करते करते महाप्रभु आगे आ गए और रुके हुए रथ के सामने बैठकर उन्होंने ये श्लोक बोले, बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक ऐसा है, उसका अर्थ पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर। रथ के सामने बैठकर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और उन्होंने ऐसे हाथ उठाकर नृत्य करते हुए महाप्रभु से कहा कि जिस व्यक्ति ने यौवन की अवस्था में मेरा हृदय चून लिया था, दैट पर्सन हु हैड स्टोलन माय हार्ट इन माय यूथ, वो आज मेरे सामने वापस मुझे मिल गए, मैं उनको खो चुकी थी। राधा रानी खुद बोल रही ना, राधा रानी के भाव से बोल रहे कि जिनको मैं खो चुकी थी वो मेरे सामने अभी प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। मुझे याद आ रही है चैत्र महीने की जो चांदनी और चंद्र से प्रकाश से भरी हुई रातें जिसमें हम लोग घुमा करते थे रास नृत्य करने के लिए, उस समय मालती फूलों की खुशबू सब जगह बहा करती थी और बहुत सुंदर मंद मंद हवा वहां पर चलती थी, जो कदम के वन से होकर कदम के वन की खुशबू लेकर आती थी हवा उस समय चला करती थी, इस यहां से मालती फूलों की खुशबू और यहां से कदम फूलों की खुशबू। उस समय आपका हमारा प्रेम का रिश्ता मुझे याद आ रहा है और आप मेरे वही प्रेमी हो जो मेरे साथ कदम के वन में खेला करते थे, लेकिन मेरा मन यहां पर खुश नहीं है, मेरा मन यह चाहता है कि आपको दोबारा मैं उसी वन में लेकर चलूं जहां पर हम लोग चैत्र की रात में घुमा करते थे, मतलब वृंदावन में। अभी वो किस भाव में है, वो कुरुक्षेत्र में, इस भाव में वो बोल रहे हैं उनसे, हे भगवान हे मेरे प्रियतम, चलो हम सब मिलकर जमुना किनारे जाएंगे, यही मेरी आपकी आपके साथ प्रार्थना है। यहां कुरुक्षेत्र के अंदर हजारों लोग हैं, हाथी है, घोड़े हैं, रथ हैं, और वृंदावन में हमारे बहुत सुंदर फूल हैं, हाँ सुंदर सुंदर ध्वनि करने वाले पक्षी हैं, गूंजने वाले मधुमक्खियां हैं, हमिंग बीज, और आप यहां पर राजा के रूप में हो, आपके साथ बहुत बड़ी सेना है, लेकिन वृंदावन में आप एक ऑर्डिनरी ग्वाल बाल हो, हाँ सिंपल कावर्ड बॉय, वहां पर आप गाय चलाते हो, आपके हाथ में मुरली रहती है। मुझे यहां पर इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी सेना के बीच में एक कण का भी आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, जो सागर जैसा आनंद मुझे श्री वृंदावन में आपके साथ में मिलता था उसका एक कण का भी अनुभव यहां पर नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी इच्छा है चलो हम सब चलेंगे श्री वृंदावन धाम में, ये राजपाट ऐश्वर्य सब छोड़ दो और हमारे संग चलो वृंदावन में। मैं आपको विनती कर रही हूं चलो वृंदावन चलेंगे, यही मेरा ध्येय है जीवन का। ऐसे महाप्रभु जी अनेक श्लोक बोलते जाते हैं और वो क्या बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पुरुष शरीर में है ना, राधा रानी का भाव है उनके मन में, स्वयं कृष्ण है वो, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर जगन्नाथ से बोल रहे हैं। ये भक्त कृष्ण है वो जगन्नाथ कृष्ण है, रथ में बैठे हुए कृष्ण है, नीचे बैठे हुए कृष्ण राधा रानी के भाव में बात कर रहे हैं। कितना अनोखा दृश्य है ये। इसलिए पुरुष के शरीर में रहकर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के जैसा बोल रहे हैं उनको, तो क्या बोल रहे हैं किसी समझ में नहीं आ रहा था। केवल स्वरूप दामोदर जी तो जो थे जो ललिता देवी के अवतार हैं उनको ये सब बात समझ में आ रही थी कि जो कुरुक्षेत्र में लीला हुआ था उस भाव में चैतन्य महाप्रभु यहां पर जगन्नाथ से बोल रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि बहुत लोगों के लिए मन और हृदय जो एक होता है, मेरा मन जो है वो साक्षात वृंदावन है, और हे जगन्नाथ मैं आपको विनती करता हूं मतलब करती हूं कि दोबारा मेरे हृदय के वृंदावन में आपके कदम रखना, दोबारा मेरे हृदय में आना, हम वृंदावन में गाय चराएंगे, मतलब अपने मन में, मेरा मन जो है वृंदावन से अलग नहीं है, इसलिए मैं आपको विनती करती हूं मेरे हृदय में आइए, मेरा मन और वृंदावन एक ही है, इसलिए कृपा करके आपके चरण कमल इसमें रख देना। हे मेरे प्रभु, यही मेरी आपसे विनती है, मेरा घर वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है, और मैं आपका संग चाहती हूं, इसलिए अगर मुझे आपका संग नहीं मिला तो मुझे अपना जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे रथ के सामने बैठकर बोल रहे हैं, सब लोग अचंभित हैं, क्या हो रहा है, अचानक नृत्य खत्म हो गया, सब लोग नाचने वाले बड़े रुक गए, सब लोग सुन रहे हैं क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान से वार्तालाप हो रहा है उनका, और जगन्नाथ भी सुन के रुक के सुन रहे हैं, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, रथ रुका हुआ है, सब लोग बैठ के सुन रहे हैं क्या हो रहा है। इस तरह से यहां पर थोड़ा लंबा वर्णन है, आप लोग पढ़िए इसको, चैतन्य चरितामृत के अंदर उनका वार्तालाप बहुत लंबा चला है। हाँ, मेरी इच्छा है कि कल जब रथ चलेगा तो बीच में रुककर हम लोग भी ये वार्तालाप करेंगे भगवान से। हाँ, बीच में ये किताब लेके जाएंगे और सब लोग रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे और जगन्नाथ से बात करेंगे राधा रानी के भाव में, चलो वृंदावन चलो, हमारा मन और आप हमारा हृदय एक ही है, आप अपने चरण हमारे मन में रखिए, चलो वृंदावन में जाएंगे, इसे बात करेंगे। फिर बीच में ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप वृंदावन को कैसे भूल गए, जहां पर आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, आपके मित्र हैं, क्या आप सबको भूल गए, क्या आप गोवर्धन को भूल गए, क्या आप जमुना जी को भूल गए, और क्या आप वो भी भूल गए कि अकेले वन में आपने हमसे रास नृत्य किया था, क्या उस वन को भी आप भूल गए। हे कृष्ण, आप तो बहुत सुंदर सभ्य गृहस्थ हैं, आप बहुत अच्छे बर्ताव करने वाले हैं, आपका हृदय कोमल है, आप बहुत दयालु है, और मैं जानती हूं कि आपके अंदर कोई दोष नहीं है, फिर भी आप हमको भूल गए, कैसे भूल गए आप हमको, हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावन में रहते हैं, हमारा दुर्भाग्य आप जान नहीं सकते हैं, आप जब हमको छोड़ के चले गए तो हमारा दुर्भाग्य इतना था कि आपसे हम खो गए, आपको खो गए हम सब लोग, कैसे आपको हमारी याद नहीं आती है। एक दर्दी प्रेमी बोल रहा है भगवान से। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हम आपको नहीं बुला रहे, हम अपने आप की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन माता यशोदा, पिता नंद महाराज और इतने सारे ब्रजवासी, हाँ, जो आपके लिए तड़पते हैं कि आप उन सबको मार देना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि सब उनकी मृत्यु हो जाए, वो मृत्यु तक आज तक आ गए हैं, इतनी तड़प उनकी हो गई है, हमें आपकी परवाह नहीं, हमारी परवाह नहीं है, लेकिन उनका तो जरा सोचिए जो आपको प्रेम करते हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, चलो दोबारा वृंदावन चलो। इस तरह से संवाद जो है वो आगे बढ़ते रहता है। इसके बाद में एक जगह आती है रथ यात्रा में, उसका नाम बालागंडी। बालागंडी के जगह पर ऐसा लीला होता है कि रथ रुक जाता है और रथ रुकने के बाद में बहुत सुंदर सुंदर फल फूल और जूसेस और मेवा सब लेके आते हैं भगवान के लिए, और रथ यात्रा के बीच भगवान विश्राम लेकर भोजन करते हैं। तो बाला घंटे आने के बाद में एकदम सुंदर सुंदर व्यंजन जो है ब्राह्मण सब लोग लेके आए। उस जगह का नाम है, उसका संस्कृत में का नाम क्या है, विप्रशासन, यानी कि वहां पर ब्राह्मण लोग सब मिलकर अच्छे अच्छे भोग भगवान को लेके आते हैं, बालागंडी, जो उसका आज का नाम है बालागंडी। तो उस जगह पर दो, एक जगह पर नारियल के पेड़ थे और एक जगह पर बहुत फूलों के गार्डन थे जो वृंदावन की तरह नजर आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से जाते हैं गार्डन के अंदर, उस गार्डन का नाम क्या है बताओ? यस, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। हमारे ऑफिस के बाजू में जो गार्डन है उसका भी नाम जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है। इसी भावना से बनाया उसको कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु बालागंडी में रथ रुकने पर विश्राम करने गए और यहां पर भगवान को रथ पर बैठे हुए भोग लगाया गया। कल हम कोशिश करेंगे कि जब बीच में भगवान से वार्तालाप होगा तो बीच में भगवान को भोग भी लगाएंगे हम, बीच में ब्रेक लेकर थोड़ा सा आइटम रखेंगे और वो ऑन द वे होता है ना, चल रहे हैं, बीच में क्या हो गया, खराब फूड आ गया, थोड़ा जूस पियेंगे, वेफर खाएंगे, होता है ना कभी ट्रेन में लोनावला के रास्ते पर रुक जाते हैं हम लोग, उतर के मेवा खाते हैं, कुछ से वेफर खाते हैं, जूस पी लेते हैं, ब्रेक लेते हैं ना, ऐसे भगवान को भी ब्रेक देंगे, बीच में थोड़ा भोग लगाएंगे और थोड़ा वार्तालाप भी करेंगे सब लोग के प्रतिनिधि के रूप में। तो भगवान उधर गए जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, भगवान इतने नाच नाच के इतने थक गए थे कि जैसे गार्डन में गए एकदम गिर गए, पूरा शरीर पसीने से भर गया था। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र वहां पहुंचे और वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा को बोलते हैं, राजा का वस्त्र निकाल दो, धोती कुर्ता पहनो, वैष्णव का वस्त्र पहनो और जाओ, अभी अभी सेवा करने का मौका है, भगवान थोड़े आधे होश में है आधे होश में नहीं है, उनको पता नहीं वो किस दुनिया में है, भगवान के प्रेम में मशगूल होकर वो ऐसे दिव्य अवस्था में है, उस समय जाना और उनकी सेवा करना। तो जैसे भगवान उसे गिर जाते हैं प्रेम में, ऐसे पागल होकर मग्न होकर गिरे हुए हैं, तो उस समय राजा प्रताप रुद्र जो है धीरज बना के उनके पैर अपने गोद में लेते हैं और पैर को मसाज करते हैं, पैर को मसाज करके जो भागवतम का दशम स्कंद के में बहुत सारे गीत हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत, हाँ और कौन से गीत हैं, यस गोपी गीत, तीन प्रकार के गीत है उसके अंदर, जो उसमें से गोपी गीत गाने लगते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि भृण्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत सुंदरता से गाते लगता, पैर में मसाज कर रहे हैं महाप्रभु चैतन्य के, सुंदर कोमल फूल के जैसे कमल है महाप्रभु चैतन्य के, उसको लेकर मसाज कर रहे हैं और मुख से इतना सुंदर भजन गा रहे हैं। उसका भाव क्या है कि गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान रास लीला के अंतर अंतर्धान हो गए हैं और भगवान को खोने के पश्चात सब गोपियां व्याकुल होकर जमुना किनारे वन वन में भटक रही है, पेड़ों को पूछ रही है, पक्षी को पूछ रही है, वेली को पूछ रही है, फूलों को पूछ रही है, कहीं हमारे श्याम सुंदर को आपने देखा है, और कह रहे हैं कि आपकी जो लीला है, आपका जो वर्णन है, वो सुनकर दुनिया में जो लोग तड़प रहे हैं उनकी तड़प समाप्त हो जाती है, इस दुनिया के दुख की आग में जो जल रहे हैं वो शांत हो जाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथामृत का पान करने से, कथामृत सुनने से जो जीवन में दुख में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। तो क्या उसका वर्णन है, तो वो गीत गाने लगते हैं और जैसे ही आधे होश में आधे बेहोशी अवस्था में आनंद की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु उनके मुख से दिव्य गोपियों का गान सुनते हैं, तो कहते हैं और गाओ और गाओ और गाओ, तो ये और गाने लगते हैं और गाने लगते हैं, और जैसे ही गाने लगते हैं आगे 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 बहुत बड़ा लंबा गीत है वो, हाँ शरद उदाशये साधु जातु जा, बहुत सुंदर सुंदर आगे पूरा 15-16 श्लोकों का गायन है वो। जैसे आगे बढ़ लगते वैसे वृंदावन का वर्णन आता है, गोपियों का वर्णन आता है, सब आसमन का वर्णन आता है और कैसे सबके साथ भगवान कृष्ण लीला करते हैं और कैसे गोपियां उनके ना होते हुए उनसे तड़प रही है, उनको मिलने की आशा रखते हैं, पश्चाताप कर रही है कि हमने गर्व किया, ये सोच करके हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं अकेले के साथ सबको छोड़कर। लेकिन सत्य ये था कि वो सबके साथ में थे, हमने क्यों गर्व किया, हमने गर्व किया इसलिए सबको छोड़कर वो चले गए। गर्व न किया होता तो हमारे सबके साथ में इतने अनंत रूप में वो नृत्य करना चालू रखते थे। ऐसे गा रहे हैं वो, तो झट से बीच में चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और पैर दबाने वाले राजा को गले लगाते हैं, ऐसे जोरदार आलिंगन देते हैं उसको। सारों को भट्टाचार्य को बहुत खुशी होती है, देखो अभी तुमको राजा ने, राजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया अपने शिष्य के रूप में अपने साबित। तो वो महाप्रभु चैतन्य को सब पता है ये कौन है, लेकिन पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कैसे भक्त हो, बताओ तुम्हारी पहचान क्या है। तो राजा प्रताप रुद्र जो है जानबूझकर उनको बोलते नहीं कि वो राजा है, वो कहते हैं मैं आप सेवा, आपके सेवकों का सेवक हूं, आई एम योर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, और कृपा करके मुझे आप ऐसे ही पहचानिए। मेरी इच्छा है कि आपके सेवकों का सेवकों के रूप में आप मेरा स्वीकार करें, बस इतना ही मुझे मेरी इच्छा है और मेरी कोई तमन्ना नहीं है। हमको भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए। हमारा कैसे होता है, हम कहीं किधर भी गए ना, गांव में समझो किधर गए जहां पर हमको कोई पहचानता नहीं है, तो हम लोग सबको बताएंगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं बॉम्बे से हूं, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मेरे इतने सारे फॉलोअर हैं, मेरा इतना पहचान है, मेरा इतना पोजीशन है, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारा बॉम्बे में है, हमारा ये है, हमारा वो है। तुरंत अपना परिचय देना आरंभ करते हम लोग। हाँ, ट्रेन में भी अगर पूछेंगे ना साहब आपका नाम क्या है, तो आप इतना नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम स्वरूप दास है, बोलिए मैं डॉक्टर हूँ, बॉम्बे से हूँ, ये हॉस्पिटल में हूँ, डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुरंत उसका पूंछ लंबे लंबे लगाते रहेंगे उसको। तो ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहां पर हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई ना पहचाने। हाँ, जैसे अभी कोई जो सचिन तेंदुलकर है वो जगह ढूंढते रहते हैं कि ऐसी जगह चला जाऊं जहां पर मैं फ्रीली शॉपिंग करूं, कोई पूछेगा नहीं मुझे तुम कौन हो, कोई जानता ही नहीं। यहां पर जाएगा तो सब जगह अरे तेंदुलकर है, तेंदुलकर है, तेंदुलकर है, ऐसा करेंगे ना, ना शॉपिंग करने देंगे ना कुछ खरीद देंगे। अरे वो एक केला भी रस्ते पर नहीं खरीद सकते, खरीद सकते क्या खुद को, आपको और हमको रस्ते में अच्छा केला खरीदने का भाग्य उपलब्ध है। हम लोग कभी भी रस्ते में जाके केला भाव करके अच्छी तरह से घासा घिस करके खरीद सकते हैं। लेकिन बड़ा मशहूर आदमी होगा ना तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना जूता खरीद सकता है, ना केला खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है, छुप छुप के करना पड़ता है। वो छुट्टियां मनाने के लिए वो लोनावला माथेरान नहीं जा सकता है, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका का देश ढूंढना पड़ता है, यहां कोई उसको पहचानता नहीं है, यहां लोग क्रिकेट भी नहीं खेलते वहां पर जाना पड़ता है। वैसा हमारा स्वभाव है कि जहां भी जाएंगे हम लोग अपना परिचय देंगे कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं यहाँ का ऑफिसर हूं, मेरे को इतना आता है, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मेरे को बहुत पेंटिंग भी अच्छा आता है, ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरा कार्ड ले, वो सब बताते रहते हैं। लेकिन राजा है, राजा प्रताप रुद्र, पूरा उड़ीसा का अधिकार उसके पास में है, जगन्नाथपुरी का मंदिर उसके अंडर है, सब धनवान है, सब कुछ है उसके पास। वो महाप्रभु मतलब भगवान को क्या बोल रहा है, कृपा करके मेरे मुझे आप अपने सेवक का सेवक इसी रूप में पहचानिए, बस डोंट आस्क मी एनीथिंग एल्स। हमको भी भगवान के सामने खड़े रहकर ऐसा मन में सोचना नहीं चाहिए। पंडरपुर के मंदिर में जाएंगे अभी हम लोग एकादशी के दिन, तो कभी कभी क्या होता है कुछ वीआईपी लोगों को लेके जाते हैं अंदर, तो कभी कभी हमको भी लेके जाते हैं, बोलते नहीं हम लोगों को कैंप लगाया ना, वो भक्ति विधान कैंप लगाया ना, इसके प्रमुख है, जरा इनको दर्शन करो। मतलब कहीं ना कहीं अपना कार्ड यूज करते हो कि मैं कोई ना कोई तो हूं, यहां पर जो बड़ा बड़ा कैंप लग रहा है ना उसका मैं प्रमुख हूं, चलो उसको अंदर ले लो। लेकिन इसमें वो संकोच होता है एक्चुअली कि भगवान के सामने भी अपना कार्ड दिखा दे कि हम लोग कौन है, फिर वो दर्शन होता है भगवान का, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने हमारी एक ही पहचान है, दास दास अनुदास। हाँ, आप चर्च में जाओ, कुरान मस्जिद में जाओ, या गुरुद्वारा में जाओ, या सिनेगॉग में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम भगवान के सर्वेंट है, बस। कोई राजा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मंत्र प्रधान नहीं है, कोई धनवान व्यक्ति नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ओनर नहीं, कुछ नहीं है, हमारा कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पोजीशन हमारे शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। अगर ये शरीर हमारा मर गया और हमने कहीं और जन्म लिया तो हम बोल सकते क्या हम डॉक्टर शैनबाग हैं, नहीं, वो शरीर बदली हो जाएगा आपका, आपको दोबारा स्कूल में जाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड एसएससी ट्वेल्थ वापस करना पड़ेगा, और शायद आप कुत्ता बिल्ली बन गए तो फिर आई डोंट नो कौन से स्कूल में जाएंगे और क्या डॉक्टर बनेंगे। तो ये सब पहचान जो है वो टेम्पररी है, और राजा प्रताप रुद्र अपनी एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, जो इस जन्म से नेक्स्ट जन्म तक, नेक्स्ट जन्म से नेक्स्ट जन्म तक कायम रहेगी, परमानेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। कहीं से भी कहां भी जाएंगे तो दास दास अनुदास सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ये पहचान जो है वो कायम रहेगी हमारी। इसलिए इसी जन्म में सर्वेंट बनना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलते सर्वेंट मिलता नहीं आजकल, बहुत मुश्किल है, सब लोग सर्वेंट का काम छोड़ के जाते हैं आजकल। सर्वेंट का बच्चा भी आईआईटी का पढ़ाई कर रहा है तो सर्वेंट कैसे बनेगा, कारपेंटर का बच्चा भी कॉलेज जाता है थोड़ी कारपेंटर बनेगा, हाँ वायरमैन का बच्चा भी आजकल एमबीबीएस हो जाता है थोड़ी वायरमैन काम करेगा। तो धीरे धीरे सब काम खत्म हो रहे हैं। हमारे घर में कारपेंटर काम कर रहा है, वो बोलते हैं कि कारपेंटर है ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है, मेन कारपेंटर कारपेंटर काम लेता ही नहीं आजकल, बोले असिस्टेंट है ही नहीं कुछ, किसी को काम नहीं करना है, सर्वेंट किसी को नहीं बनना है, सबको मास्टर बनना है। ये हमारा दुर्भाग्य है, सब लोगों को मास्टर बनना है, सब लोगों को स्वामी बनना है, सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं दुनिया को, कोई सर्वेंट नहीं बनना चाहता। और हमारा भक्ति का मार्ग क्या बताता है, हमको सब कुछ भूलकर सर्वेंट बनना है। राजा प्रताप रुद्र बहुत बढ़िया भक्त है, बहुत बढ़िया भक्त है वो। सबसे पहले उसके मन में क्या विचार आया कि राजा होने पर भी अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु को मिलने को नहीं मिल रहा है तो राजा मुझे नहीं बनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे राजा के पोस्ट को अटैचमेंट नहीं है, उसे भगवान से अटैचमेंट है, इसलिए भगवान को मिलना मिलना चाहिए, इसलिए वो राजा का पद छोड़ने को भी तैयार है। नहीं मिलता राजा मुझे, क्या फायदा राजा बनके, अगर भगवान की मुलाकात नहीं हो रही है तो राजा बनके फायदा क्या है, ऐसा राजा सोच रहा है, भंगी नहीं सोच रहा है, राजा सोच रहा है ऐसे। और हकीकत में राज वस्त्र उतारकर सिंपल वैष्णव के वस्त्र पहनकर भगवान के चरण कमल अपने गोद में लेकर उसने मसाज किया और एक सामान्य सेवक की तरह गीत गाया, और गीत गाकर जब पूछा गया कि तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो, तो उन्हें कहा कि आपके सेवक का सेवक, बस कितनी बड़ी आदर्श वस्तु है। तो इस तरह से सार्वम भट्टाचार्य के कृपा के वजह से राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या है, राजा होने पर भी उसको चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात नहीं हुआ, जब महाप्रभु चैतन्य का किसी भक्त ने आइडिया करके उनको मिलवाया उनसे, तभी उनकी मुलाकात हुई। इसका मतलब क्या होता है, भक्त की कृपा के बिना भगवान की भेंट नहीं हो सकती है। जब भक्त की कृपा होती है तो भगवान की भेंट होती है, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई तो रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, जब भक्त प्रसन्न हो गए उन्होंने आशीर्वाद दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने दर्शन दिया। जब ध्रुव महाराज निकले थे अपने घर से गुस्सा करके, ऐसा स्थान चाहिए जहां पर मुझे कोई नहीं हिला सकता है, अब मेरे पिताजी के गोद में मुझे ढकेल दिया गया है, अपनी सावत्र माता जो थी उसकी सौतेली माता थी, उसने पिताजी के गोद में बैठे हुए उसको ढकेल दिया, बोलते तुम मेरे पेट से आए हुए बच्चे नहीं हो, इसलिए इस गोद पर बैठना पिताजी के तुम्हारे अधिकार में नहीं है, उसको भगा दिया था। तो जंगल में गया भाग भाग के कि जंगल में भगवान मिलते हैं, मैं उनसे मांगूंगा, लेकिन अकेले को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब भगवान के भक्त नारद मुनि वहां पर आए, उनका दीक्षा लिया, उनको गुरु माना, उनका आदेश स्वीकार किया, उनका सेवा किया, तो आगे जाके भगवान का दर्शन हुआ। प्रहलाद का भी ऐसा ही हुआ, राक्षस की माता के पेट में वो था गर्भ के रूप में, लेकिन गर्भ के अंदर नारद मुनि के मुख से भागवत सुना। भक्त की कृपा से भगवान से पहचान होती है हमेशा। तो राजा जो अपने आप मेहनत कर रहा है भगवान से मिलने के लिए, प्रस्ताव भेज रहा है, महाप्रभु जी आपको मुझे मिलना है, और महाप्रभु जी बोलते हैं मुझे राजा से नहीं मिलना है, एक बार इंक्वायरी किया, सेकेंड टाइम वापस रिक्वेस्ट आया, महाप्रभु जी राजा को आपसे मिलना है, मैंने कहा ना मुझे राजा से नहीं मिलना है, फिर तीसरी बार रिक्वेस्ट आया, थर्ड टाइम महाप्रभु बोलते हैं दोबारा अगर आप राजा के मिलने की रिक्वेस्ट लेके मेरे पास आओगे मैं तुरंत जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा। बोलने नहीं, अभी नहीं बोलना है, ये उनकी पोजीशन थी, उनका रिक्वेस्ट को ठुकराया गया था कि नहीं मिलना है। तब उन्होंने क्या किया, ऐसा है क्या, मैंने परवाह करता हूं उनके, कौन महाप्रभु है, मेरे को इतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे मिलने को ठुकरा रहे हैं, नहीं मैं उनको मिलूंगा, ऐसा कोई बोलेगा ना? गर्व से क्या बोलेगा, अरे मैं राजा हूं, राजा मैं उनका विनती कर रहा हूं, फिर भी वो एक सन्यासी मुझे मिलने को मना कर रहा है, ऐसा नहीं था उनका भाव। उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु के भक्त का शरण लिया और इंक्वायरी किया, प्लीज मुझे बताओ कैसे इनसे मिलना है, क्या करना चाहिए बताओ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं इनको मिलने के लिए बताओ। इनका कोई बात नहीं, धीरज रखो। मतलब क्या, भगवान को मिलना है तो धीरज रखना जरूरी है, बी पेशेंट। हम बोले हमने 5 साल जप किया प्रभु, 5 साल, 5 साल मैं जप कर रहा हूं, रोजरी कर रहा हूं, माला कर रहा हूं, तस्बीह कर रहा हूं, अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अरे भगवान को खिलौना है क्या? हाँ 5000 जन्म तक यहां पर मजा किया तुमने और 5 साल जप किया तो उनको तुरंत भगवान का दर्शन चाहिए, आपका सर्वेंट है क्या वो? क्या आपने जप किया तो तुरंत उनको हाजिर होना चाहिए? हाँ सर आपने बुलाया, क्या काम है मेरे पास, ऐसा बोलना चाहिए आप? अरे तो विश्व के मालिक है वो, जब मर्जी होगी तब आएंगे, जब दिल उनका आएगा तो आपके भाग भाग के आएंगे। जैसे वो विठल विठल भगवान थे ना, वो ऐसा सेवा किया पुंडलिक ने, द्वारका से भाग के आए वो पंडरपुर के अंदर, ऐसा सेवा माता पिता का किया भक्ति भाव से, उसको देखने के लिए द्वारका छोड़ के आए और भक्त का बोला अभी मैं बिजी हूं, ये लो इस पे खड़े रहो, तो खड़े हो गए, वेट कर रहे हैं उधर। ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसी सेवा करो भक्तों की कि वो अपना महल छोड़कर आपको मिलने को आना चाहिए। प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो कहते थे कि भगवान को मिलने का या दर्शन करने का अभिलाषा मत करना, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो कि वो आपको देखने का इच्छा करे, ऐसा काम करो कि उनको लगना चाहिए अरे भगवान इस भक्त को जाके मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आप उनको मिलने का प्रयास करोगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा भगवान को मिलना, लेकिन भगवान अगर सोचते हैं कि आपको मिलना है तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा वो, है ना, है कि नहीं? अगर प्राइम मिनिस्टर को आपको मिलना है, आपकी इच्छा है मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए, कितना मुश्किल है, तो हो सकता है जन्म में आपको मुलाकात ना हो, उनकी दर्शन भी नहीं होगा किधर दूर दूर से भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बोलता है कि मुझे भक्ति विधान में काम करने वाले राधा रमन को मिलना है, तो कितना टाइम लगेगा उनको मिलने के लिए बोलो? 1 दिन के अंदर मुलाकात हो जाएगी, आपके दरवाजे पे आएंगे वो, उसको मिलने की इच्छा होनी चाहिए बस। तो बोला ऐसा काम करो अपने जीवन में, ऐसी सेवा करो भक्तों की कि आपकी सेवा को देखकर वो अपना जगह छोड़कर आपको देखने के लिए आना चाहिए। और वही पंडरपुर की कहानी है, पूरी पंडरपुर की कहानी उसी कहानी है, भक्तवत्सल भगवान अपनी द्वारका को छोड़कर सीधे आ गए लक्ष्मी जी को लेकर, रुक्मिणी को लेकर, दर्शन करने के लिए भक्त का, और वेट कर रहे हैं वो। और यहां पर क्या बताया जा रहा है, सारंग भट्टाचार्य राजा प्रताप चंद्र को बोल रहे हैं वेट, शांति से वेट करो, योग्य समय आएगा, अपनी सेवा करते रहो, जहां जहां मौका मिलेगा भक्तों की सेवा करते रहो, फिर योग्य समय आएगा फिर महाप्रभु का दर्शन भी होगा। सेवा करते रहे वो, सब भक्तों की सेवा करते रहे, जितने बंगाल से भक्त आए सब लोगों की खाना पीना रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सब करते रहे वो, सब योग्य व्यवस्था करते रहे। रथ यात्रा आई उसमें भी उन्होंने पूरा हेल्प लगाया, बार बार पूछते रहे अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अरे रथ में रथ यात्रा में भगवान गिर गए उसको उठाया तो भगवान ने कहा अरे फिर एक बार मेरे राजा ने मुझे हाथ लगाया, मुझे अच्छा लगता नहीं ऐसा बाहर से दिखाया, फिर दुखी हो गए सार्वभौम अभी क्या करूं मैं, मेरा क्या होगा, डोंट वरी आई भी टाइम आएगा। तो जब बालाघाटी में रथ रुका, भगवान रेस्ट करने गए आधे होश में आधे बेहोश में, बोले जाओ जाओ अभी जाओ, गाइड किया उनको, जाओ जाओ भक्त गाइड कर रहा है, जाओ अभी राइट समय है, जाके उनके पैर गोद में लिए और उनका मालिश किया। तब जाकर भगवान ने भी ऐसा नाटक किया कि मैं जानता नहीं कुछ, बोलते कि कौन हो तुम, कौन हो, वो कह रहे मैं कोई नहीं हूं, मैं दासों का दास हूं, दैट्स ऑल। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको सच में भगवान के दासों का दास बनना है, तभी हमको भगवान की कृपा मिलेगी और दर्शन मिलेगा। भक्ति विधान में रहने का हमको यही सीखना है कि जो भगवान के मेहमान है वो यहां पर मरीज बन के आते, जो जिनको उसको भेजना है यहां पर पहुंच, ऐसा नहीं कि मिरर में हॉस्पिटल का और कोई नहीं, ऐसा नहीं कि बॉम्बे में और कोई हॉस्पिटल नहीं, जिनका भाग्य होता है वो तो भक्ति विधान हॉस्पिटल में आते हैं, भगवान के मेहमान है, प्रभुपाद जी के मेहमान है, उनकी दास के रूप में हमको सेवा करना चाहिए वो भावना से, ये भगवान के भेजे हुए मरीज हैं, बीमार होकर हमारे पास सेवा लेने आए, जब उनको सेवा देकर हम लोग अच्छा करेंगे, प्रसन्न करेंगे साथ में, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दास दास अनुदास, ये चैतन्य महाप्रभु जिनको वो बता रहे हैं कि मैं आपके दासों का दास हूं, वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। वो स्वयं एक श्लोक बोलते हैं, ना हम विप्रो ना हम नरपति। हाँ क्या बोलते हैं वो, कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं, राजा नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं केवल जो गोपियों के नाथ हैं, जो बांसुरी बजाने वाले हैं, उनके दासों का दासों का दासों का दास हूं। गोपी भरतुर मतलब जो गोपियों के नाथ हैं, भरतुर मतलब पति, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास, जो उस गोपीनाथ के चरणों के दासों के दासों के दास हैं, वही मेरी एक पहचान है बस, और कोई पहचान मेरी है ही नहीं। मैं इसका पुत्र हूं, इसका बेटा हूं, ये संस्था का मालिक हूं, ये धन के प्रॉपर्टी का ओनर हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान के लिए एक ही है, ये ऐसा ही कार्ड है जो वैकुंठ में जो कार्ड दिखा के तुरंत एंट्री मिलती है, और कोई कार्ड दिखा के ना डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर, वो कार्ड में गौलोक वृंदावन में एंट्री नहीं मिलती है। इन द किंगडम ऑफ गॉड ओनली वन कार्ड वर्क्स, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दैट इज द ओनली कार्ड। वो कार्ड दिखाएंगे तुरंत आपको भगवान के धाम में एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर रहते हुए वो प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी हम लोग हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम डॉक्टर हैं, हम फलाना हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये यहाँ की प्रैक्टिस है हमारी। उस प्रैक्टिस को बिगाड़ कर हमको ये प्रैक्टिस करना है कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का सेवक हूं। और यही पहचान जब हम लोग कल्टिवेट करेंगे तो मरते हुए हमको ये आ जाएगा, हे भगवान ना हम विप्रो अच्छा नरपति, हाँ मैं ना डॉक्टर हूं, मैं ना पुरुष हूं, मैं ना डायरेक्टर हूं, मैं ना अमीर हूं, मैं ना धनी गरीब हूं, मैं केवल आपका दास हूं। ऐसे बोलेंगे ना तो आपका एंट्री वहां पर तुरंत पास, गेट खुल जाएगा, आप अंदर चले जाओगे भगवान के धाम में। रथ यात्रा का यही मैसेज है हमारे लिए। रथ यात्रा में भगवान के दयालु कितने हैं देखो आप ना, मंदिर छोड़कर बाहर निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए, सब मिलो देखो उनको दर्शन करो, प्रसाद लो उनका, कीर्तन करो, नाचो, कृपा करते हैं भगवान सब। आप सब लोग निकलिए और याद रखना रथ यात्रा में रथ पर बैठे हुए भगवान को जो देखता है, रथारूढ़ गच्छन् रथस्वम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पद्म पुराण में लिखा है रथ में बैठे हुए भगवान को जो देखता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। फिर उसको देखकर जो हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, जैसे महाप्रभु जगन ने प्रार्थना किया था, और दंडवत प्रणाम करता है रस्ते पर, रथ को बैठे हुए भगवान को देखकर प्रणाम करता है जमीन पर झुककर, तीसरा हो गया ना। चौथा, जिस रस्सी से भगवान के रथ को हम खींच रहे हैं उस रस्सी को हाथ लगाता है, या उस रस्सी को पकड़कर रथ को खींचता है, पांच हो गए ना काम। ये पांच में से कोई एक काम या पांचों काम करेगा तो इस जीवन के अंत में भगवान के धाम में चला जाएगा। इतनी बड़ी पावर है उसके अंदर। डोंट थिंक हम लोग ऐसा खेल खेल में कुछ काम कर रहे हैं, टाइम पास, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, आप लोग को बहलाने के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा मत समझो। चलो मनोरंजन तो हो ही रहा है उसके अंदर, आनंद तो मिल ही रहा है डेकोरेशन करने में, सब फेस्टिवल करने में, लेकिन साथ साथ इस जीवन में जन्म मृत्यु का बेड़ा पार करने का मौका मिल रहा है। और कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर, अरे ये अमीर है, अरे ये गरीब है, ये धनवान है, ये पढ़ा लिखा है, अरे ये काला है, गोरा है, अरे ये इंग्लिश बोलने वाला है, ये मराठी बोलने वाला है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान के रथ यात्रा में शामिल होगा भगवान के धाम में चला जाएगा। कोई जाति का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई धन का भेद नहीं, कोई भेद नहीं, सबके लिए ओपन है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जगन्नाथ है वो, जगन्नाथ, वो केवल हिंदू नाथ नहीं है, ऐसे बोलते थे प्रभुपाद जी। इज नॉट ओनली नाथ ऑफ हिंदू, हिंदू के नाथ नहीं है वो जगत के नाथ है। जगत में जितने लोग हैं, जितने जीव है, सबके नाथ है वो, कुत्ता बिल्ली पंछी झाड़ हाँ कीड़ा मकोड़ा मच्छर इंसान सबके नाथ है वो भेदभाव नहीं करते। हम लोग भेदभाव करते, अरे ये हिंदू है, अरे क्रिश्चियन है, मुसलमान है, अरे काला है, गोरा है, अफ्रीकन है, इंडियन है, ये भेदभाव हम करते हैं, भगवान नहीं करते कभी भी, क्योंकि हम सब भगवान के बालक हैं। यहां पर आने के बाद में हमने भेदभाव किया है, हाँ ये इंडियन है, ये अफ्रीकन है, ये निग्रो है, ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, ये सब हमने यहां पर क्लासिफिकेशन किया है, अपना बॉर्डर बना दिया कि हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ये अमेरिका का बॉर्डर है, इंग्लैंड का बॉर्डर है, और यहाँ के अंदर रहने वाले लोग इंग्लैंड के लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, इसके अंदर वो अमेरिकन लोग हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर वो बनाया है वर्गीकरण, लेकिन भगवान की दृष्टि से बोलते क्या, भगवान ये सब भूमि मेरी है और ये सब मेरे बच्चे हैं, ऐसा भगवान बोलते होंगे ना। एक बाप पिताजी के 5 बालक है और एक बालक ने अमेरिका में घर बनाया, एक बालक ने इंग्लैंड में बनाया, एक भारत में बॉम्बे में बनाया, एक ने कलकत्ता में बनाया, तो भगवान क्या बोलते हैं, ये सब तो मेरा ही प्रॉपर्टी है, मैंने इनको डिवाइड करके दे दिया है। बोलेगा ना पिताजी, नहीं नहीं पिता, लड़का बोलेगा नहीं मेरा घर है, लेकिन पिताजी ने उसको दिया है। उस तरह से पूरा पृथ्वी जो है भगवान ने हमको दिया है, हमने फिर बॉर्डर बना दिया, अरे ये अमेरिकन, ये इंग्लैंड, अरे इंडिया, ये पाकिस्तान, पहले सब एक था ना, हमारे जन्म होने के पहले सब एक था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब भारतवर्ष था वो। और बोल रहे हैं अभी खालिस्तान निकालो उसमें से बाहर, हम बोलते हैं इधर क्या बोलते हैं उसको, नीचे कौन सा वो तमिल, उसको पार्ट निकालो बोलते हैं, यहां से पार्ट निकालो बोलते हैं। ये डिवीजन हमने किया है, लेकिन जगन्नाथ उसका डिवीजन नहीं करते हैं, जगन्नाथ के साथ उसके बालक हैं, सबको आना चाहिए और सबको जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेकर, चाहे भी किसी भी ग्रुप के हम लोग हो, जगन्नाथ का रथ खींचेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा। हाँ कैसे, समझो कोई हिंदू आदमी नींबू का शरबत पिएगा और कोई क्रिश्चियन पिएगा और कोई मुसलमान पिएगा और कोई काला पिएगा निग्रो और कोई गोरा पिएगा अमेरिकन, तो सबको लाभ सेम होगा कि डिफरेंट होगा, एक ही लाभ होगा है ना, जिसको प्यास लगी है उसको वही आनंद मिलेगा, चाहे वो काला हो या गोरा हो, भूख लगी है और खाना मिलेगा, कोई निग्रो खा रहा है, अमेरिकन खा रहा है, इंडियन खा रहा है, सबका पेट शांत हो जाएगा। वैसा ही है वो, जगन्नाथ के सामने कोई भी आएगा संतुष्ट हो जाएगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। इसलिए आप लोग जितने लोग यहां पर हैं उन सब लोगों को बताइए, जो लोग नहीं है बड़े प्रेम से भाग लेने दो, सबके लिए आमंत्रण दो, सबके लिए प्रसादम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, डोंट वरी। और आनंद इतना होगा जब आप लोग नाचेंगे, संकोच नहीं करेंगे, और नाचना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, नाचते समय मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करना बहुत जरूरी है। केवल नाचकर मनोरंजन करने के लिए हम नहीं नाच रहे, नाचते समय ये भावना होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए नाच रहे हैं। जैसे मीरा भाई बोलती थी ना, वो रानी थी, चित्तौड़ की रानी थी, वो बड़ी नृत्यांगना थी वो, लेकिन उसने कहा मैं नाचूंगी तो केवल गोविंद के नाचूंगी, मेरे गिरधारी के नाचूंगी, मेरा नृत्य कला जो है वो केवल गिरधारी के लिए है बस। और नाचते नाचते ही वो गिरधारी के मूर्ति में विलीन हो गई। वैसे हम नाच किस लिए रहे हैं, अपने को कितना अच्छा नाच आता है वो दिखाने के लिए नहीं, सब देखेंगे भक्ति विधान के लोग कि डॉक्टर शानबाग कितना बढ़िया नाचते हैं, इसके नाचना नहीं, अपने को नाचना इसलिए है कि जगन्नाथ प्रसन्न हो। तो नाचने को आता हो या नहीं आता हो नो प्रॉब्लम, आपको स्टेप्स आता हो कि नहीं आता हो, अगर आप नाच उनके लिए रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे, बाकी कोई देखे या नहीं देखे, उनके लिए नाचना चाहिए और नाचते समय उनको पुकारना चाहिए, तब जाकर हमारा रथ यात्रा जो है 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको कहते हैं भाग लेना। भाग लेना मतलब क्या, हाथ जोड़ के बाजू में खड़े, आप नाचो, अच्छा आप बहुत अच्छा नाचते हो, आप नाचते रहो ऐसा नहीं, दूर से देखकर नहीं, अंदर जाके प्रेम से भगवान के लिए, उनके आनंद के लिए शरीर को हिलाना है, हाथ उठाना है, पुकारना है मुंह से, वैसा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसा मौका बार बार आता है, 3 जुलाई को आया, फिर 6 जुलाई को आएगा, हाँ फिर जन्माष्टमी को आएगा, फिर गोवर्धन पूजा में आएगा, फिर गौर पूर्णिमा को आएगा, ऐसे आते रहेगा, फिर बरसाने में आएगा, आते रहेगा, अनंत रूप में आते रहेगा, भाग लेते रहो। हर मंगलवार को आएगा, मंगलवार के प्रवचन के पहले आएगा। हम लोगों ने भी सोच के रखा है कि हम लोग स्ट्रेचर तैयार रखेंगे हर कीर्तन के पास, क्यों, जो लोग बड़े बीमार होंगे वो कीर्तन में नहीं नाच पाएंगे, उनको स्ट्रेचर से हम लोग लेके एडमिट करेंगे, बीमार है बेचारे नहीं नाच सकते हैं, उसको फ्रीजर में लेके जाओ, भर्ती करो, आईवी लगाओ, थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह दे दो, फिर नाचने को अच्छे हो जाएंगे, फिर नाच करेंगे, लेकिन रखेंगे जरूर, क्योंकि आज ये बीमार है तो कल वो बीमार हो जाएगा, स्ट्रेचर का रखना जरूरी है। वैसे हम लोग कर रथ यात्रा में उस स्ट्रेचर भी लेके जाएंगे साथ में, जो नहीं नाच रहे उनको डालेंगे और भर्ती कर देंगे, उनको एडमिट करेंगे। हरे कृष्णा, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। हरे हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। थैंक यू।